प्रिय श्रोताओं नमस्कार। बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। प्रिय श्रोताओं, जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के नए नियम में से यहूदा नामक पुस्तक का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं। इसका मुख्य विषय है विश्वास के लिए संघर्ष। तो आइए आज के इस अध्ययन में हम सम्मिलित हों। प्रस्तुत है कार्यक्रम सत्य वचन।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं आशा करता हूं कि आप सब कुशल पूर्वक हैं और हमेशा की तरह आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सुनने और सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं और अपने उन सभी नए मित्रों का भी जो आज पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि हम सब इन दिनों बाइबल में से नए नियम की पत्रियों में से यहूदा की पत्री से अध्ययन कर रहे हैं और पिछले अध्ययन के द्वारा हमने बहुत सारी आशीषों को अपने जीवन में प्राप्त किया है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अपने उन श्रोता मित्रों का जिन्होंने पत्र के माध्यम से, फोन के माध्यम से और SMS के माध्यम से हमारे वचन को सुनकर अपनी आशीषों को हमारे साथ बांटा है और अपने प्रार्थना निवेदन भी हम तक पहुंचाए हैं। मैं आशा करता हूं कि आप भी अपने प्रार्थना निवेदन और इस कार्यक्रम को सुनने के बाद आपको कैसा लगा उसकी प्रतिक्रिया हमारे साथ बांटेंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन सत्य है जो हमसे बातें करता है। तो इससे पहले कि आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ें, आइए हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर से आज के अध्ययन के लिए सहायता मांगें। प्रेमी और दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए, इस संगति के लिए जिसे आपने हम सबों को दिया है, ताकि हम आपके जीवित और सामर्थी वचन का अध्ययन रेडियो के माध्यम से दूर दराज में बैठकर अलग अलग स्थानों में, गांव में, शहरों में, पहाड़ों में एक साथ आपके वचन को सुनकर अध्ययन कर सकते हैं। आज जब हम यहूदा की पत्री से अपने अध्ययन को कर रहे हैं, हमारी विनती है कि आप हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों को अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान करें, ताकि जब वे आपके वचन को सुने तो आपका वचन प्रत्येक के जीवन से बोलने और बातचीत करने पाए, उनके जीवन को स्पर्श करने पाए, ताकि वे सत्यता को जानकर अपने जीवन में आपको जगह दे सकें। हाँ पिता परमेश्वर, हम विनती करते हैं कि आप प्रत्येक श्रोता भाई बहनों को अधिकाई से आशीष दें। और इसी के साथ हम प्रार्थना करते हैं हमारे उन श्रोता भाई बहनों के लिए जो इस समय निराश हैं, परेशान हैं, चिंता और तनाव में हैं, दबाव में हैं, बीमार की अवस्था में हैं। पिताजी, आप उन पर भी कृपा दृष्टि करें, क्योंकि आप वही परमेश्वर हैं जो सदैव प्रेम करते हैं। आप उनके साथ हो, उनसे भी बोले और बातचीत करें, आज के अध्ययन पर अपनी आशीष प्रदान करें। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे मित्रों, जैसा कि मैंने आपसे कहा है कि हम सब इन दिनों यहूदा की पत्री से अध्ययन कर रहे हैं और इस पत्री के द्वारा से हम सीख रहे हैं कि यहूदा हमें बता रहे हैं कि अधर्म, अविश्वास, झूठी शिक्षा और परमेश्वर के वचन से हटकर अपने विचार को परमेश्वर स्वीकार नहीं करता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर इसका दंड देता है। यहूदा ने इसके उदाहरण भी हमें दिए हैं। प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश से पूर्व इसराइल ने परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया था और वह पूरी पीढ़ी जंगल में समाप्त हुई। परमेश्वर ने सदोम और अमोरा जो नगर थे वहां के लोगों में अधर्म को पाया और उन्हें दंड देकर नष्ट किया। नूह के युग में पाप के बढ़ जाने के कारण परमेश्वर ने संपूर्ण मानव जाति का अंत कर दिया था। कैन स्वयं को अधिक समझदार समझता था। कोरह परमेश्वर के अधिकार का विरोधी था और विलाम ने भ्रम के कारण अधर्म की शिक्षा दी थी। ये सब विधर्मियों के उदाहरण हैं। आज के झूठे शिक्षकों का वर्णन हम देखेंगे। अगले कुछ पदों में आज के झूठे शिक्षकों का वर्णन किया गया है। ऐसी भाषा आप अन्य स्थानों में नहीं पाएंगे जहां अंतिम दिनों के झूठे शिक्षकों को ऐसी सजीव, स्पष्ट, नाटकीय तथा भयावह भाषा में व्यक्त किया गया है। आइए आप मेरे साथ यहूदा की पत्री उसके 12 पद को पढ़ें। लिखा हुआ है, ये तुम्हारी प्रेम सभाओं में तुम्हारे साथ खाते पीते, समुद्र में छिपी हुई चट्टान सरीखे हैं और बेधड़क अपना ही पेट भरने वाले रखवाले हैं। वे निर्जल बादल हैं जिन्हें हवा उड़ा ले जाती है, पतझड़ के निष्फल पेड़ हैं जो दो बार मर चुके हैं और जड़ से उखड़ गए हैं। मेरे प्रियो, यह कैसा चित्रण है। लिखा है, समुद्र में छिपी हुई चट्टान सरीखे हैं। ऐसी चट्टानें समुद्र में चलने वाले जहाजों को तोड़ देती हैं। पौलुस ऐसे लोगों को विश्वास के विनाशक भी कहता है। पौलुस ने दो विश्वासियों का उल्लेख किया है जो विधर्म के कारण अपने विश्वास को ध्वंस कर चुके थे। पहला तिमोथियुस की पत्री 1 अध्याय उसके 19 और 20 पद में, ऐसे झूठे शिक्षकों के कारण कितने युवक युवतियों का विश्वास नष्ट हो गया है। यहां पर हम देख रहे हैं, लिखा है, वे तुम्हारी प्रेम सभाओं में तुम्हारे साथ खाते पीते। मेरे प्रियो, आरंभिक कलीसिया में आराधना से पूर्व सदस्य अपना अपना भोजन लाते थे और एक दूसरे के साथ बांटकर खाते थे। गरीब विश्वासी बहुत कम भोजन लाते थे, परंतु उद्देश्य था आपस में मिल बांट करके भोजन खाना। उनमें विधर्मी भी थे जो भूखे भेड़ियों के समान भोजन पर टूटते थे और सबसे अधिक भोजन खाते थे। वे स्वार्थी चरवाहे थे जो भेड़ों को खिलाने की अपेक्षा स्वयं ही अपना पेट भरने की लालसा रखते थे। उनका यह व्यवहार भोजन खाने में ही नहीं, परमेश्वर का वचन सुनाने में भी प्रकट था। वे केवल अपनी ही चिंता में रहते थे कि कैसे अपना पेट भरें। आज भी ऐसे कई विधर्मी हैं जो इस लालसा में रहते हैं कि किस प्रकार अपना पेट पूजन करें, कैसे अपने परिवारों की देखभाल करें। यदि वे सत्य नहीं हैं, तो आप उन्हें पहचान लेंगे। कवि मिल्टन ने अपनी कविता में परमेश्वर के एक महान प्रचारक और व्याख्याकार के प्रति दुख व्यक्त किया है, क्योंकि उसे समुद्र में डुबाकर मार दिया गया था। वह उस समय के इंग्लैंड की स्थिति का वर्णन करते हैं। भूखी भेड़ें आशा करती है, परंतु उन्हें भोजन नहीं मिलता है। प्रचार मंच पर उपस्थित झूठे शिक्षक का यह कैसा विस्मयकारी चित्रण है। यहूदा आगे कहता है, वे निर्जल बादल हैं। उन्हें देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि वे परमेश्वर के वचन से सुसज्जित हैं, भरपूर हैं, परंतु वे वास्तव में खाली हैं, सूखे हैं। वे बागा पहनकर ऊंची आवाज में बड़े अधिकार से प्रचार करते हैं। उन्होंने भाषण देने और प्रचार करने का प्रशिक्षण लिया हुआ है और वे धर्मशास्त्र को शब्दों से सजाना जानते हैं कि परमेश्वर के उद्देश्य से सर्वथा भिन्न अर्थ में उसे प्रस्तुत करें। वे आकाश में मंडराते अति सुंदर बादलों के समान हैं। जिनसे धरती को ताजगी नहीं मिलती है। ऐसे लोगों से हम सबों को सावधान रहने की आवश्यकता है। मुझे याद है जब मैं छोटा था तब गर्मियों में मैं खेत के क्षेत्र में खेलने के लिए जाया करता था और बादलों को देख करके प्रार्थना करता था कि पानी बरसने लगे, जिससे कि मुझे काम करने में और खेलने में मजा आ जाए। परंतु उन बादलों में पानी नहीं होता था। यहूदा झूठे शिक्षकों का यही चित्रण प्रस्तुत करता है, उनमें जीवन का जल नहीं है। मेरे प्रियो, वे परमेश्वर के वचन को नहीं जानते हैं, परंतु ऐसा दिखावा करते हैं जैसे वे सब कुछ जानते हैं। इसलिए यहूदा आगे कहता है, पतझड़ के निष्फल पेड़ हैं जो दो बार मर चुके हैं और जड़ से उखड़ गए हैं। परमेश्वर ने झूठे शिक्षकों के विरुद्ध चेतावनी देते हुए कहा है, मत्ती रचित सुसमाचार उसके 7 अध्याय और उसके 20 पद में लिखा है, इस प्रकार उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। यहूदा कहता है कि झूठे शिक्षक पतझड़ के पेड़ के समान हैं जिनमें फल नहीं लगते। वे ऐसे पेड़ के समान हैं जो सूख कर भी सूख गया है। डीएल मूडी कहते थे, जो एक महान प्रचारक हैं, जिसका एक बार जन्म हुआ है वह दो बार मरेगा और जिसका दो बार जन्म हुआ है वह एक ही बार मरेगा। यहूदा कहता है कि झूठे शिक्षक आत्मिकता में मृतक हैं। वे अपने अपराधों और पापों में मरे हुए हैं, परंतु फिर भी वे अगुवाई की भूमिका निभाना चाहते हैं। उनको पार्थिव मृत्यु भी आएगी, अतः वे दो बार मरेंगे। झूठे विधर्मी शिक्षकों का यह कैसा चित्रण है। परंतु यहूदा की बात का अंत यहां पर नहीं हुआ है। यहूदा की पत्री उसके 13 पद में हम पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, ये समुद्र के प्रचंड हिल कोरे हैं जो अपनी लज्जा का फेन उछालते हैं। ये डावाडोल तारे हैं जिनके लिए सदा काल तक घोर अंधकार रखा गया है। मेरे प्रियो, पिछले पद में यहूदा कहता है कि वे निर्जल बादलों के समान हैं जो स्थिर नहीं रहते। ऐसे प्रचारक रविवार की आराधनाओं में समाचार पत्रों या टीवी पर प्रसारित समाचारों को विषय बनाकर प्रचार करते हैं। वे परमेश्वर के वचन की व्याख्या नहीं करते हैं कि उस दिन के लिए परमेश्वर का संदेश सुनाए। एक हफ्ता के बाद जब लोग रविवार के दिन परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए आते हैं तो उन्हें परमेश्वर का वचन ही सुनाया जाए, ना कि समाचार पत्र और ना कि टीवी की बातें उन्हें बताई जाएं। आज कई कलीसियाओं में ऐसा ही हो रहा है, यहां तक कि कई बार बड़ी सभाओं में भी ऐसा ही किया जाता है। मेरे प्रियो, आज लोगों को आवश्यकता है परमेश्वर के जीवित वचन का, ना कि समाचार पत्रों के समाचार का। अब यहूदा कहता है कि वे समुद्र के प्रचंड हिल कोरे हैं। वे चिल्ला चिल्ला कर भाषण देते हैं। डॉक्टर थेयर का कहना है कि ये झूठे शिक्षक अपनी उग्र भावनाओं के वशीभूत रहते हैं। वे निर्लज्जता से शब्दों और कार्यों से अपनी पतित एवं परित्यक्त आत्मा का प्रदर्शन करते हैं। इसीलिए यहूदा कहता है कि डावाडोल तारे हैं। उनका आकाश में कोई निश्चित मार्ग नहीं होता है। वे किसी नियम का पालन भी नहीं करते हैं। लिखा है, जिनके लिए सदा काल तक घोर अंधकार रखा गया है। मेरे प्रियो, यह नरक का वर्णन है। नरक के लिए एक और उपमा दी गई है, आग। नरक तो एक वास्तविक स्थान है, चाहे आप इसे माने या ना माने, परंतु वह आग है या हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि वहां आत्मिक प्राणी और मनुष्य भी होंगे। मनुष्य का सबसे बड़ा पाप है आत्मिकता में चूक अर्थात अविश्वास, प्रभु यीशु पर विश्वास न करना आपके जीवन में नाश को लाता है। अतः शारीरिक दंड उचित प्रतीत नहीं होता है। मेरे विचार में मनुष्य चाहता है कि वहां सच्ची आग हो, क्योंकि वह स्थान आग से भी अधिक भयानक होगा। हम सिर्फ आग को जानते हैं लेकिन उससे अधिक भयानक बात को नहीं जानते, लेकिन याद रखें कि आग से भी अधिक भयानक होगा। नरक का दूसरा प्रतीक है घोर अंधकार। यह मेरे लिए आग से भी अधिक भयंकर स्थिति है। और मेरा मानना है कि पतित मनुष्य अपने साथ अपना अंधकार लेकर चलता है, भौतिक अंधकार ही नहीं आत्मिक अंधकार भी। जॉन मिल्टन ने वृहत आत्मिक अंतर्दृष्टि थी। उसने लिखा है जिसके सीने में ज्योति है वह मध्य में बैठकर उज्जवल दिन का आनंद ले सकता है, परंतु वह जो अंधकारमय आत्मा और बुरे विचारों को छिपाता है दिन दोपहर में भी अंधकार में ही चलता है, वह स्वयं अपनी ही बनाई काल कोठरी में रहता है। जी हाँ, यह बिल्कुल सत्य है कि जो व्यक्ति अपने विचारों को छुपाता है, बुराइयों में चलता है, वह अपने ही बनाई हुई काल कोठरी में रहता है। यह एक महान बात है। मेरे विचार में नरक का भय वहां जाने वालों द्वारा अधिक बढ़ जाएगा। पृथ्वी पर एक स्थान नरक की रसोई भी कहलाता है। यह वहां उपस्थित जनों में परस्पर अंतर के कारण है। मेरे लिए अंधकार एक भयानक बात है। मैं वहां सदा के लिए रहना नहीं चाहता हूं और मैं नहीं चाहूंगा। कॉल्सवेट नामक गुफाओं में यदि आप जाएं और वहां जब बत्तियां बुझा दी जाती हैं तब आपको घोर अंधकार का बोध होता है। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं 1995 में एक सोने की खान में गया था और वह 3000 फीट गहरे में था। हमारे माथे में जो बत्तियां लगी हुई थी हमें कहा गया कि हम उसे बुझा दें। जब हमने उसको बुझा दिया तो हम एक दूसरे को नहीं देख पा रहे थे, यहां तक कि अपने आप के हाथों को भी नहीं देख पा रहे थे। यह बहुत ही भयानक अंधकार था, घोर अंधकार था। इसी बात को यहूदा हमें कहता है कि अंधकार भी एक भयानक बात है। अब हम धर्मशास्त्र के सबसे अद्भुत अंश को देखेंगे। यह यहूदा की पत्री ही में पाया जाता है। तो आइए हम पढ़ते हैं यहूदा की पत्री उसके 14 और 15 पद को। यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, हनोक ने भी जो आदम से सातवीं पीढ़ी में था इनके विषय में यह भविष्यवाणी की, देखो प्रभु अपने लाखों पवित्रों के साथ आया कि सबका न्याय करे और सब भक्तिहीनों को उनके अभक्ति के सब कामों के विषय में जो उन्होंने भक्तिहीन होकर किए हैं और उन सब कठोर बातों के विषय में जो भक्तिहीन पापियों ने उसके विरोध में कही है दोषी ठहराए। मेरे प्रियो, हनोक की यह भविष्यवाणी पुराने नियम में नहीं पाई जाती है। हनोक का विवरण उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 5 में हमें मिलता है, परंतु यह भविष्यवाणी वहां नहीं है। हनोक एक साधारण नाम नहीं है। अतः निश्चित जानिए कि यह हनोक उत्पत्ति के पुस्तक 5 अध्याय का ही हनोक है जो परमेश्वर की संगति में चलता और रहता था और परमेश्वर ने उसे उठा लिया। हनोक के संबंध में डॉक्टर विवेस्ट का संदर्भ मैं आपको देना चाहता हूं। यह संदर्भ हनोक के पुस्तक नामक इसराइली धर्मशास्त्र से लिया गया है। दूसरी शताब्दी की कलीसिया के समय पितरों के पास यह पुस्तक थी, परंतु कुछ भागों के अतिरिक्त यह पुस्तक खो गई है। परंतु 1773 में ब्रूस द्वारा इथोपिया की बाइबल में पूरी पाई गई है। इसमें हनोक और नूह को दिए गए ईश्वरीय प्रकाशन का भी वर्णन है। इस पुस्तक का उद्देश्य है कि पापियों के निहित दंड का ईश्वरीय विधान तथा संसार पर परमेश्वर के शासन को प्रकट किया जाए। मेरे प्रियो, हनोक ने अंतिम दिनों के झूठे शिक्षकों की भविष्यवाणी की है, जो एक अद्भुत बात है। परमेश्वर ने हनोक की पुस्तक की धर्मशास्त्र में नहीं रखा है, अन्यथा वह निश्चय धर्मशास्त्र का एक भाग होता, परंतु परमेश्वर उसकी एक भविष्यवाणी को धर्मशास्त्र में रखना चाहता था। यह भविष्यवाणी प्रभु यीशु के पुनः आगमन की है कि वह अपने पवित्र जनों के साथ आएगा। मेरे प्रियो, उत्पत्ति की पुस्तक में कहा गया है कि हनोक जीवित उठा लिया गया था और भविष्य में एक दिन कलीसिया भी जीवित उठा ली जाएगी। आज अधिकांश कलीसिया मर चुकी है, परंतु प्रभु यीशु के आगमन पर वे सब जीवित कलीसिया के साथ उठाए जाएंगे। यह शिक्षा पुराने नियम में नहीं है, तथापि हनोक उठाए जाने वाले विश्वासियों के प्रतीक स्वरूप है। हनोक को जल प्रलय के दंड से पूर्व ही उठा लिया गया था और सच्ची कलीसिया भी महाक्लेश के दंड से पूर्व प्रभु यीशु के पास बादलों में उठा ली जाएगी। महाक्लेश के बाद प्रभु यीशु पृथ्वी पर उतरेगा, परंतु उससे पहले प्रभु यीशु पृथ्वी पर नहीं उतरेगा। जी हां, उसकी कलीसिया पृथ्वी पर से उठा ली जाएगी। वह समय प्रभु यीशु के पुनः आगमन का समय नहीं होगा। उस समय की कलीसिया झूठे विश्वासियों की होगी और वे पूर्णतः विधर्म में मग्न हो जाएंगे तथा महाक्लेश में प्रवेश करेंगे। महाक्लेश के अंत में प्रभु यीशु सबका न्याय करने और अभक्तों के कुकर्मों को प्रकट करने के लिए आएगा। यहूदा की भविष्यवाणी धर्मशास्त्र का एक महान अंश है। हम यहां पर देखते हैं, लिखा है, लाखों पवित्रों अर्थात आत्मिक जीवन, आत्मिक जीव या प्राकृतिक जीव, इसका अर्थ है कि प्रभु यीशु के दूसरे आगमन पर कलीसिया उसके साथ होगी। अब यदि कलीसिया को उसके साथ राज करने के लिए लौटना है, तो इसका अर्थ है कि कलीसिया पहले इस पृथ्वी पर से चली जाए। अतः यदि आप यह मानते हैं कि परमेश्वर अपने पवित्रों के साथ आएगा, तो आपको कलीसिया को उठाए जाने पर विश्वास करना ही होगा, अन्यथा आप परमेश्वर के इस पृथ्वी पर कलीसिया के साथ आने की बात को स्वीकार नहीं कर पाएंगे। यहां पर यहूदा कहता है कि सबका न्याय करे। प्रभु यीशु जब पृथ्वी पर पुनः आएगा, तब वह न्याय करेगा। उसने स्वयं ही जैतून के पर्वत पर अपने शिष्यों से कहा था, परमेश्वर के वचन में बार बार इसकी चर्चा की गई है, पुराने नियम में भी हमने यह देखा है, सब भक्तहीनों को दोषी ठहराए। वे भक्तहीन इसलिए कहे गए हैं कि वे परमेश्वर को अपने जीवन से बाहर रखते हैं, उनमें परमेश्वर का पवित्र भय नहीं है। आज यह अत्यधिक व्यवहारिक विषय है। आज लोग प्रभु यीशु के बारे में सुनना और जानना नहीं चाहते हैं। क्योंकि वे सोचते हैं कि यदि हम उसे जान जाएंगे तो हमारे जीवन के उन अच्छी बातों को हम जिसे करना चाहते हैं शायद नहीं कर पाएंगे। परंतु वे भूल बैठे हैं कि प्रभु ईश्वर के द्वारा ही उनके जीवन में उद्धार है। यहूदा कहता है कि अभक्ति के सब कामों के विषय में दोषी ठहराए, उनके अधर्म के काम, उनके काम परमेश्वर के विरोध में थे। लिखा है उन सब कठोर बातों के विषय में। हनोक की यह भविष्यवाणी उस कलीसिया से संबंधित है जो विश्वासियों के उठाए जाने के बाद पृथ्वी पर रहेगी। जी हां, प्रभु यीशु जब न्याय करने के लिए आएगा तब पाखंडी कलीसिया इस पृथ्वी पर होगी और उसका न्याय किया जाएगा। मेरे मित्रों, आज सवाल यह है कि आप किस कलीसिया के साथ रहना या होना चाहते हैं, उस उठाए जाने वाली कलीसिया के साथ या इस पृथ्वी पर महाक्लेश में सताव में रहने वाली कलीसिया के साथ। क्या आज आप यीशु पर विश्वास करते हैं कि वह फिर से इस पृथ्वी पर आएगा? याद रखें कि प्रभु यीशु इस पृथ्वी पर आए और उसने हमारे लिए हमारे पापों के बदले में क्रूस की मृत्यु सही, वे मृतकों में से जी उठे और पिता के पास अर्थात स्वर्ग में आज भी विराजमान है। वह दोबारा इस पृथ्वी पर हमारा न्याय करने के लिए आएंगे। क्या हम उसके लिए तैयार हैं? मेरे मित्रों, आइए आज हम इस अध्ययन के द्वारा अपने जीवन में इन वचनों को ग्रहण करें और परमेश्वर से सहायता मांगे कि हम प्रभु यीशु के उस राज्य में प्रवेश कर सकें। यहाँ पर हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है। मुझे आशा है कि इस अध्ययन के द्वारा आपने अपने जीवन में अवश्य ही आत्मिक लाभ प्राप्त किया है। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे।
अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सत्य वचन। हमें विश्वास है कि आज का ये अध्ययन आपके आध्यात्मिक जीवन के लिए फायदेमंद सिद्ध हुआ है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस अध्ययन से आपको और क्या क्या आशीष मिली हैं। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपको देने के लिए हमारे पास नया नियम एवं पूरी बाइबल उपलब्ध है। यदि आप इसे प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। पता एक बार फिर से सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। आप इस नंबर पर हमें SMS या टेलीफोन भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। एक बार फिर से सुन लीजिए, हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, प्रभु आपको आशीष दे।
धन्य है वो जो मन के दीन है, स्वर्ग के राज्य में जाएंगे। धन्य है वो जो मन के दीन है, स्वर्ग के राज्य में जाएंगे। धन्य है वो जो मन के दीन है, स्वर्ग के राज्य में जाएंगे। धन्य है वो जो शोक है करते, शांति आनंद पाएंगे। सुनो धन्य वचन, सुनो धन्य वचन, यीशु का धन्य वचन होगा धन्य जीवन। धन्य है वो जो मन के दीन है, स्वर्ग के राज में जाएंगे। धन्य है वो जो शोक है करते, शांति आनंद पाएंगे।